ایران رادیو پادکست.
دوستو جو پوڈکاسٹ آپ سن رہے ہیں وہ ایران ریڈیو دوارا تیار کیا گیا ہے. اگر آپ دوسرے وشیوں پر بھی پوڈکاسٹ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ iranradio.ir/hi پر سن سکتے ہیں. ایران ریڈیو سے میں ہوں احمد عباس. اسرائیل کا میٹاسٹیٹس پوڈکاسٹ کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے. دوستو اس پوڈکاسٹ میں ہم اسرائیل کی ناجائز استھاپنا کے اتہاس پر نظر ڈال رہے ہیں. دوستو آج ہم اپنی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تھیوڈور ہرزل کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے پہلی زائنی کانفرنس کا آیوجن 29 اگست 1897 کو سوئٹزرلینڈ کے بیسل شہر میں کیا گیا. کانفرنس میں کیا ہوا؟ اس میں 200 سے زیادہ زائنی نیتاؤں اور اسکالروں نے شرکت کی. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ہرزل کی کتاب یہودستان میں یہودیوں کے لیے ایک ملک کی استھاپنا پر چرچا کرنا. ہرزل نے فلسطین کی سرزمین کو ہڑپ کر یہودیوں کے لیے ایک اسٹیٹ کی استھاپنا کا سپنا دیکھا تھا. کانفرنس میں خوب باتیں ہوئیں اور جن مدوں پر سہمتی بنی وہ کچھ اس پرکار تھے. فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک سرکشت ملک کی استھاپنا کی جائے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودی کسانوں، ادیوگ پتیوں اور ویاپاریوں کو فلسطین کی اور پلائن کے لیے آمادہ کیا جائے. جس دیش میں بھی یہودی ہوں وہاں ان کے بیچ اتحاد پیدا کیا جائے اور یہودیوں کو اپنے اور اپنی قوم کے بارے میں بیدار کیا جائے. کانفرنس میں جو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا اس میں طاقت کا استعمال اور سینے پہلو صاف ظاہر تھا. حالانکہ اس میں یہودی شاسن کے بجائے یہودیوں کا گھر جیسے شبدوں کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ عربوں اور باقی دنیا میں سینسیٹیویٹی پیدا نہ ہو. 19ویں صدی میں پہلی بار مختلف دیشوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ اسپشٹ روپ سے اور ایک بیان جاری کر کے ایک ملک کی سمپربھوتا اور ساورنٹی کا کھلے عام الگھن کریں. کانفرنس میں موجود ایک زائنی ناہوم سوکولوو نے اپنی کتاب زائنی واد کا اتہاس میں لکھا ہے، اس کانفرنس کا آیوجن ماتم کرنے یا اعتراض کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا. اس کا مقصد تھا گمبھیر قدم اٹھانا اور اپنی مدد خود کرنا. اس کانفرنس میں میتھمیٹیشن اور ہیڈلبرگ یونیورسٹی کے پروفیسر ہرمن شاپیرا نے دو پرستاؤ پیش کیے. غور سے سنیے گا، یہ پرستاؤ بڑے اہم ہیں. ان کی سمیکشا 5ویں اور 11ویں کانگریس میں کی گئی اور انہیں منظوری دی گئی جس نے زائونی آندولن کا روپ دھارن کر لیا. پہلے پرستاؤ میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک فنڈ استھاپت کرنا تھا اور دوسرے پرستاؤ میں ایک یہودی یونیورسٹی کی استھاپنا کرنے کی بات تھی. یہاں یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ پہلی زائنی کانفرنس آیوجت ہونے سے قریب 66 سال پہلے لارڈ شافٹس بری نے 1838 میں پربھاوشالی پترکا کوارٹرلی ریویو میں یہودی ایجنٹوں کے ہاتھوں فلسطین کے اپنیویش میں برٹش سامراج کے لابھ کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. آرٹیکل میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں. فلسطین کی زمین اور جلوایو گریٹ برٹین کے مد نظر آرتھک وردھی کے لیے مناسب ہے. یہاں بہترین اور بڑی ماترا میں کپاس کی کھیتی کی جا سکتی ہے. ریشم اور اون اس علاقے کے مکھیہ اتپاد ہیں. اسی طرح سے زیتون بھی اس سرزمین کا مکھیہ اتپاد ہے. صرف بجٹ اور مہارت کی ضرورت ہے. ایک انگریز افسر کی موجودگی اور سمپتی کی سرکشا سے لوگوں کو کھیتی باڑی کے لیے فلسطین لایا جا سکتا ہے اور یہودیوں کی جن کے پاس کہیں بھی کھیتی کی زمین نہیں ہے وہ وہاں جائیں گے اور بڑے پیمانے پر کھیتی کر سکیں گے. اب ہم ایک بار پھر شاپیرا کے دو پرستاؤں کی اور واپس لوٹتے ہیں. پہلی زائنی کانفرنس کے 2 مہینوں کے بعد اس کا ندھن ہو گیا تھا، مگر 1901 اور 1913 کی کانفرنسوں میں ان پرستاؤں کو پاس کیا گیا. شاپیرا کے دوسرے پرستاؤ کے بارے میں 1918 میں فیصلہ لیا گیا اور 1925 میں ایک ہیبرو یونیورسٹی کا ادگھاٹن کر دیا گیا. دوستو یہاں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں عثمانی خلافت کی کیا حالت تھی. पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस्मानी खिलाफत पहले विश्व युद्ध के गैम्बल में बुरी तरह फंस गई। असल में सुल्तान को कई फायदे नजर आने लगे थे। इस साम्राज्य के सुल्तान को लग रहा था कि विश्व युद्ध में भाग लेकर और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया का साथ देकर वो मिस्र, ट्यूनिजिया, साइप्रस और बाल्कन को अपने साम्राज्य में फिर से लौटा सकते हैं, जिस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। इसके अलावा सुल्तान को ये उम्मीद भी हो गई थी कि पहले विश्व युद्ध में भाग लेकर वो दाखिली अशांति को काबू कर सकेंगे और उन्हें विदेशी कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन उस्मानी सल्तनत की उम्मीद के बरक्स युद्ध में उसके सहयोगी हार गए। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को जीत मिल गई। यहीं से बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों की बुनियाद पड़ी। जंग में बड़ा नुकसान हुआ था। इस तबाहकुन जंग में करीब 9,000,009 यानी 99,00,000 सैनिक और 77,00,000 आम नागरिक मारे गए थे। ये जंग 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुई, लेकिन उसी साल उससे पहले 30 अक्टूबर को ब्रिटेन और खिलाफत उस्मानिया के बीच मुद्रोस में जंगबंदी पर हस्ताक्षर हो गए थे। 10 अगस्त 1920 को उस्मानी शासन और जंग में जीतने वाले देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो इस प्रकार था। कुर्दिस्तान खुद मुख्तार राज्य होगा, अर्मेनिस्तान एक आज़ाद देश होगा, फिलिस्तीनी सरजमीन पर यहूदियों का वतन बनाया जाएगा, मिस्र और सूडान पर उस्मानी शासन का कोई दावा नहीं होगा, साइप्रस पर ब्रिटेन का अधिकार होगा और मोरक्को और ट्यूनिशिया पर फ्रांस का कब्जा होगा। अब इसके आगे सुनिए। इस समझौते के तीसरे अनुच्छेद में बालफोर डिक्लेरेशन की तरफ इशारा किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश की स्थापना के लिए ये घोषणा की थी। ये बयान असल में एक खत की शक्ल में था जिसे ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर जेम्स बालफोर ने ज़ायन नेता लियोनल वाल्टर रोथशील्ड को भेजा था, जो बाद में चलकर बालफोर डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर हो गया।
Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been.
इस खत में बालफोर ने लिखा था कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदी शासन की स्थापना का समर्थन करती है और इसके लिए वो कोई कसर नहीं उठा रखेगी। फिलिस्तीनियों का मानना है कि ज़ायनीवाद की मांगों को पूरा करने और फिलिस्तीन की सरजमीन पर अवैध शासन की स्थापना के लिए ये पहला कदम था। इसके बाद कुछ यूं हुआ कि लाखों फिलिस्तीनियों को उनके वतन और घरों से उजाड़ दिया गया और उन पर एक ख़त्म न होने वाला जुल्म का सिलसिला शुरू हो गया। बालफोर डिक्लेरेशन के बारे में ब्रिटिश सरकार की इस नीति को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठते हैं। एक सवाल तो यही है कि ब्रिटेन ने इसकी घोषणा क्यों की? ब्रिटेन को दूसरों की सरजमीन पर एक अवैध मुल्क बनाने का क्या फायदा था? क्या ब्रिटेन ने यहूदियों की हमदर्दी में ऐसा किया था? क्या ब्रिटेन ने ज़ायनियों के दबाव में यह कदम उठाया था? एक महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन के इससे क्या हित जुड़े हुए थे? है ना ये महत्वपूर्ण सवाल। कुछ लोगों का मानना है कि बालफोर ने इस घोषणा में यहूदियों के प्रति काफी हमदर्दी दिखाई थी। कुछ दूसरे लोग अलग विचार रखते हैं। उनका यह कहना है कि पहले विश्व युद्ध में एसीटोन की खोज जैसे कई बड़े वैज्ञानिक कारनामे अंजाम देने वाले यहूदी वैज्ञानिक और विश्व ज़ायनी संगठन के प्रमुख इज़राइल वाइजमैन की सराहना के लिए और कदरदानी के लिए बालफोर डिक्लेरेशन जारी किया गया था। एसीटोन ने ब्रितानी हथियारों के उत्पाद में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इस संबंध में एक दूसरा अनुमान भी है, वो ये है कि दुनिया में ज़ायनियों ने काफ़ी दबदबा बना लिया था और अमीर यहूदी परिवार इसके लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रहे थे, जिसके बाद बालफोर बयान जारी किया गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक तरह से वैश्विक पूंजीवाद ने बालफोर डिक्लेरेशन में भूमिका निभाई थी, जिसका यहूदी अमीरों के साथ एक अटूट रिश्ता है। ब्रिटिश सरकार उस समय वैश्विक पूंजीवाद का प्रतीक थी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बालफोर डिक्लेरेशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण मध्य पूर्व से जुड़े ब्रिटेन के हित थे। आसान लफ्जों में कहा जा सकता है कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र में ब्रिटेन और पश्चिमी दुनिया के हित यहूदियों के देश की स्थापना से जुड़ गए थे। अब ध्यान से सुनिए, ज़ायनी सरकार के लिए योजना ये थी कि ये सरकार क्षेत्र में ब्रितानी सरकार के लिए एक रणनीतिक सहयोगी की भूमिका निभाती रहे। ज़ायनिस्ट रेजिम के पहले राष्ट्रपति वाइजमैन की पैरवी ने बालफोर डिक्लेरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाइजमैन ने स्वयं कहा था कि इसके लिए बहुत ही कठिन प्रयास किए गए थे, लेकिन कूटनीति के लिए यही जरूरी था। वैसे ये भी सुन लीजिए कि बालफोर डिक्लेरेशन से पहले भी कुछ घटनाएं घटी। 1915 में पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे घटक देशों ने फैसला लिया कि सफलता मिल जाने के बाद उस्मानी राज्य को आपस में बांट दिया जाएगा। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने कई महीने तक खुफिया बातचीत की और रूसियों को उसकी प्रगति के बारे में अवगत कराते रहे। आखिरकार 1916 में दोनों पक्षों के बीच खुफिया तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर के लिए एक सहमति बन गई। इतिहासकार कहते हैं कि समझौते ने क्षेत्र की राजनीति को बदल कर रख दिया। ये समझौता साइक्स पीको के नाम से मशहूर है। साइक्स ब्रिटिश प्रतिनिधि का सरनेम था तो पीको फ्रांसीसी प्रतिनिधि का। बातचीत के बाद जो समझौता तैयार हुआ वो इन दोनों के नाम से मशहूर हो गया। इस समझौते के मुताबिक फिलिस्तीन को ब्रिटेन को सौंप दिया गया, लेकिन मैंडेट के रूप में, न कि उपनिवेश के रूप में। साइक्स पीको समझौता और बालफोर डिक्लेरेशन दो दस्तावेज हैं जिनकी वजह से फिलिस्तीन में स्थानीय लोगों और यहूदी प्रवासियों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। इससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ने लगी, वो कश्मकश में फंस गई। ब्रिटिश अधिकारी मध्य पूर्व में लोगों के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते थे। इसी तरह उनकी ये भी कोशिश थी कि यहूदी प्रवासी भी उनसे नाराज ना हो जाएं। इसी स्थिति के मद्देनज़र ब्रिटिश अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए दो रास्ते चुने। पहला समाधान ये था कि फिलिस्तीनी सरजमीन को फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच दो स्वतंत्र देशों के रूप में बांट दिया जाए। दूसरे समाधान के तौर पर एक फिलिस्तीनी सरकार का गठन करना और उसी में यहूदियों के लिए सुरक्षित आशियाना बनाना था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रमसे मैकडोनल्ड ने यहूदी सरकार के गठन के खिलाफ फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध की ताकत के मद्देनजर दूसरा विकल्प चुना और उसे संसद में पास करवा दिया। मैकडोनल्ड ने एक स्वाधीन फिलिस्तीनी देश में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय आशियाने के निर्माण के लिए 10 साल की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत तय किया गया कि 5 साल में सिर्फ 75,000 यहूदी फिलिस्तीन की ओर पलायन कर सकेंगे। इस संख्या में इजाफा सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों के बहुमत को सुरक्षित रखने की सूरत में ही संभव हो सकेगा। योजना के मुताबिक पूरे फिलिस्तीन में यहूदी सिर्फ 5% जमीन की खरीदारी कर सकेंगे। मैकडोनल्ड की योजना से वाइजमैन और दूसरे ज़ायनी नेता भड़क गए। वाइजमैन का यह मानना था कि मैकडोनल्ड की यह योजना हर्जल के यहूदिस्तान की तो पूरी तरह से मौत है। यहूदी नेता डेविड बिन गोरियन ने भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस योजना का जमकर विरोध शुरू कर दिया। इसलिए इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल देना पड़ा। बालफोर डिक्लेरेशन तक फिलिस्तीन में सिर्फ 5% यहूदी रहते थे, लेकिन इस डिक्लेरेशन के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश राज के दौरान फिलिस्तीन की ओर दुनिया भर से ज़ायनियों का पलायन काफी तेज हो गया। यहाँ अहम बात यह है कि फिलिस्तीन की ओर यहूदियों के माइग्रेशन में वृद्धि के साथ ही कई तरह के ज़ायनी संगठन सक्रिय हो गए। ये सारे संगठन ब्रिटिश सरकार के वफादार थे, मगर ज़ायनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार ज़्यादा जोर शोर से कर रहे थे। हगाना का नाम तो आपने सुना ही होगा। शुरुआत में हगाना संगठन का गठन किया गया जिसकी सैन्य विंग का नाम था पालमाख। उसके बाद कई अन्य जासूसी और अर्धसैनिक संगठनों का गठन किया गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात डर के मुद्दे को लेकर है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। फिलिस्तीन में सुरक्षा और जासूसी संगठनों का विस्तार हर्जल की सिफारिशों की बुनियाद पर किया गया। हर्जल ने यहूदियों के बीच एकता के लिए डर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस डर को एक एक ज़ायनी के दिमाग में बैठाया गया ताकि सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जाए। ये सिलसिला आज तक जारी है। 20वीं सदी की शुरुआत में जो सक्रिय ज़ायनी जासूसी संगठन और आतंकवादी संगठन थे उनके बारे में जरा सुन लीजिए। यह हम कुछ का जिक्र करना चाहेंगे। एक नाम है बर्गियोरा। 1907 में जाफा में इस गुट की बुनियाद रखने वाले रूसी वामपंथी क्रांतिकारियों से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि यहूदी प्रवासी समाज को चाहिए कि वो अपनी स्वाधीनता को फिलिस्तीनी समाज की स्वाधीनता से और ऊपर ले जाए। इस गुट का नाम बर्गियोरा के नाम पर रखा गया, जो रोम साम्राज्य के एक यहूदी कमांडर का नाम था। ये गुट दूसरे ज़ायनी गुटों की तरह फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर बल नहीं देता था, बल्कि उसका मकसद यहूदियों को स्वाधीनता दिलाना था। इस गुट को यहूदियों की रक्षा के लिए बनाया गया था और उसका मानना था कि फिलिस्तीनियों को यहूदी बस्तियों का चौकीदार बनाने के बजाय यहूदी किसानों को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। अगला नाम है हाशोमत। बरग्योरा के संस्थापकों में से एक ने 1909 में एक गुट हाशोमर का गठन कर दिया। ये छोटा गुट था लेकिन काफी डरावना, साजिश करने वाला और सदस्य भर्ती करने में बहुत सख्त था। 1920 में एक सालाना बैठक में इस गुट के सदस्यों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात को लेकर था कि क्या इसे एक खुफिया और अंडरग्राउंड गुट रहने दिया जाए या इसका विस्तार कर दिया जाए। इस मतभेद की वजह से उसी बैठक में फैसला किया गया कि इस गुट को भंग कर देना बेहतर होगा, उसके सदस्यों को हगाना में शामिल कर दिया जाए। एक और नाम सुनिए, ये नाम है नीली। इस गुट का नाम यहूदियों की पवित्र किताब के एक जुमले का शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है इसराइल की महिमा। ये गुट जानता था कि पहले विश्व युद्ध में उस्मानी खिलाफत की हार होगी, इसलिए उसने इससे जुड़ी जानकारियां ब्रिटिश सरकार को दी थीं। लेकिन 1917 में उस्मानी शासन ने इस जासूसी नेटवर्क को खोज निकाला और उसके सारे सदस्यों को फांसी दे दी। यहाँ ये बात ध्यान योग्य है कि नीली सिर्फ एक जासूसी नेटवर्क ही नहीं था बल्कि ये नैरेटिव गढ़ता था जिसकी बुनियाद पर उस्मानियों और फिलिस्तीनियों को असभ्य बताया जाता था, उसके उलट यहूदियों को ब्रिटेन का सहयोगी करार दिया जाता था। ज्यूइश लेजन 1915 में उस्मानी साम्राज्य और जर्मनी के खिलाफ लड़ने और ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए इस गुट का गठन किया गया। 1917 में ब्रिटिश सेना ने इस गुट को औपचारिक रूप से मान्यता दी। हगाना, ये बहुत कुख्यात संगठन है। 1920 में पिछले अनुभवों की बुनियाद पर इस गुट की स्थापना की गई जिसमें हाशोमर गुट की खुफिया गतिविधियों, नीली की जासूसी और लेजन की सैन्य रणनीतियों को आधार बनाया गया। हगाना ने फिलिस्तीन पर कब्जा करने की जंग के अंतिम दौर में यानी 1947 से 1948 के दौरान सबसे महत्वपूर्ण ज़ायोनी गुट की भूमिका निभाई। ब्रिटेन और ज़ायोनी नेताओं के प्रयासों के नतीजे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर 1947 को प्रस्ताव पारित किया, रेजोल्यूशन 181, और फिलिस्तीन की सरजमीन पर ज़ायोनी स्टेट की स्थापना को मान्यता दे दी। इस प्रस्ताव को अरब देशों समेत दुनिया के कई देशों ने खारिज कर दिया, लेकिन इसके नतीजे में एक ख़त्म न होने वाली जंग और लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। ये प्रस्ताव 13-33 वोटों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के आधार पर फिलिस्तीन का 55% हिस्सा उस ज़ायनिस्ट शासन को सौंप दिया गया जिसके पास इससे पहले सिर्फ 5% हिस्सा था, और फैसला किया गया कि बैतुल मुकद्दस या यरूशलम शहर अंतर्राष्ट्रीय कस्टडी के तहत होगा।